वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। सो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और निकाल लें व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इसराइलियों के सम्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। मित्रों, यह अच्छी बात है कि इसी तरह से जो होना चाहिए था उसने किया। वह सभी के सामने यहोशू को कहता है, यहोशू को उत्साहित करने के साथ साथ में वह सभी लोगों को भी उत्साहित कर रहा है जो उसके साथ में है। आइए हम पढ़ते हैं 31 अध्याय उसके 8 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसके 8 पद लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। मेरे मित्रों, इसी प्रकार का सबक या शिक्षा यशायाह को भी सीखना था। याद करें, यशायाह का 6 अध्याय इस प्रकार शुरू होता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा मैंने प्रभु को सिंहासन पर विराजमान देखा। यहाँ पर यशायाह बहुत बेचारा सा है। उज्जियाह एक अच्छा राजा था, परंतु अब वह मर चुका था और यशायाह सोचने लगा कि अब कुछ बुरा हो जाएगा। वह सोचता है कि कोई दूसरा राजा राजगद्दी पर बैठेगा और राष्ट्र दूसरे के हाथ में चला जाएगा, इसलिए उसने कहा। परंतु जब वह मंदिर में गया तो उसने क्या पाया? उसने देखा कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर विराजमान है। मेरे मित्रों, जो वास्तव में इसराइल और यहूदा का राजा था, और वह मृत नहीं, वह बीमार भी नहीं, और यशायाह ने सीखा कि बेशक उज्जियाह मर गया है, परंतु परमेश्वर अभी भी जीवित है जो उनकी देखभाल करने के लिए तैयार है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे और इसराइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। मेरे मित्रों, जबकि इसराइली इस समय कनान देश में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, आप सोचेंगे कि यदि उनसे अभी भी कोई गलती हो जाए तो परमेश्वर उन्हें अभी भी प्रवेश करने नहीं देगा। फिर भी वह मूसा को बताता है कि यह सब कुछ इस तरह से होगा। परमेश्वर मानवीय स्वभाव को जानता है, वह आपके और मेरे अस्तित्व को जानता है। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर हमें अपने करीब न रखे तो आप और मैं 10 मिनट में ही भाग खड़े होंगे। कृपया ध्यान दें कि मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 14 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तो यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे वे विचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। मित्रों, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस प्रकार से कहते हैं कि हम आज भिन्न हैं, हम परमेश्वर से मुंह नहीं फेरेंगे। लेकिन याद रखें कि यीशु ने समानांतर बात कलीसिया के लिए कही, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 8 पद में देखते हैं। विश्वास मसीह की देह का संपूर्ण सत्य प्रकट करता है। इस सवाल का जवाब यह नहीं है, क्योंकि जिस भाषा शैली में अर्थात यूनानी भाषा में यह सवाल किया गया है वह नकारात्मक प्रत्युत्तर की मांग करता है। नए नियम में कलीसिया मुख मोड़ लेगी, इस बात की भविष्यवाणी पहले से ही की जा चुकी है। यह ठीक उसी तरह है जैसे पुराने नियम में इसराइल के लिए था। मेरे मित्रों, आप और मैं इसी समय में जी रहे हैं, अर्थात इस वर्तमान समय में। मैंने देखा है कि किस प्रकार से मेरा खून दौरा करता है। मैंने देखा है कि एक कलीसिया के बाद दूसरी कलीसिया जो पहले वचन पर आधारित थी, लेकिन अब उन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया है और विश्वास से मुंह मोड़ लिया है। मैंने देखा है कि एक के बाद एक मनुष्य जो पहले भविष्यवाणियां क्या करते थे अब परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। अब आप ऐसा न कहें कि आप ऐसा नहीं करेंगे या मैं ऐसा नहीं कर सकता। मित्रों, इन दिनों में मैं सारे विषयों से अधिक यह प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे अपने नजदीक रखे। हम व्यवस्था विवरण 31 उसके 19 से 21 पद में आगे पढ़ते हैं। सो अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इसराइलियों को सिखाकर कंठ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराय देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेंगी। मेरे मित्रों, संगीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी ने इस प्रकार कहा, मुझे किसी देश का संगीत लिखने दे और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उस देश का कानून क्या कहता है। हम सभी संगीत से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आजकल जो संगीत हमारी कलीसियाओं में आ रहा है वह उचित नहीं है। यह किसी संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति ने कहा है कि किसी न किसी को इसके विरोध में बोलना चाहिए। संगीत का कुछ अर्थ होना चाहिए, संगीत से कुछ संदेश पहुंचना चाहिए जिससे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकें। आजकल की युवा पीढ़ी के पास संगीत अत्यधिक मात्रा में पहुंच रहा है, परंतु वह संगीत सुसमाचार को पहुंचाने में असमर्थ है। हम अगले अध्याय में गीत के विषय में सीखेंगे और गीत पढ़ेंगे, और गीत के विषय में रुचिकर बात यह है कि यह बात रॉक संगीत के बारे में है। क्या मैं वास्तव में समझता हूँ? जी हाँ, यह वास्तव में चट्टान के विषय में है कि मसीह कौन है। इसी प्रकार का रॉक संगीत जिसे हम सुनते हैं मूसा ने इसराइलियों को सिखाया, और इसी प्रकार का रॉक संगीत की आज भी हमें आवश्यकता है। हम व्यवस्था विवरण 31 उसके 24 से 26 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। मित्रों, क्या आप इस पुस्तक के बारे में समझे? यह आजकल की पुस्तक की तरह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। यह एक पवित्र शास्त्र और शायद मिट्टी की कुछ तख्तियां होंगी। जो भी हो, मूसा के समय में इसे पवित्र शास्त्र के रूप में लिखा गया और यह व्यवस्था की पुस्तक है जो लिखित रूप में उपलब्ध थी। याद रखें कि हम अध्ययन के उस पड़ाव में हैं जहां मूसा अंतिम पड़ाव में है और व्यवस्था को दोहरा कर बताया गया है। वह अपने अंतिम सत्र की सेवा पूरे राष्ट्र को दे रहा है। उसने ठीक उस तरह से इसराइलियों को अपने पास में बुलाया जैसे याकूब ने अपने 12 पुत्रों को अपने पास बुलाया था, जो अब तक एक बड़ा राष्ट्र बन चुके हैं और एक बड़े राष्ट्र के रूप में उनका उदय हो चुका है। मूसा उन्हें अपने पास बुलाता है। आइए पढ़ें व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसके 27 से 30 पद में लिखा है, क्योंकि तेरा बलवा और हट मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों ना करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करोगे या करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। तब मूसा ने इसराइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। मेरे मित्रों, क्या मैं इस बात को दोहरा सकता हूँ जो मूसा ने लगभग 3500 सालों पहले कही थी और जो आज भी सटीक और सत्य है? यह लिखित रूप में, व्यवहारिक रूप में पूरी भी हो चुकी है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए सत्य है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के बिना मनुष्य पूर्णतः भ्रष्ट है। बस आज हमें अपनी आंखें उठाकर अपने आसपास देखने की जरूरत है तो हम पाएंगे कि सत्य क्या है। इसी के साथ अध्याय 31 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 32 से जारी रखेंगे और इसमें हम देखेंगे मूसा का गीत। मूसा का गीत एक महान गीत है और वास्तव में यह महिमा भरा गीत है। समूचे इसराइल देश को इसे सीखना था। यह मानो एक राष्ट्रीय गान के समान था। यह गीत था जिसे स्वयं परमेश्वर ने इन्हें दिया था। प्रत्येक इसराइली को यह गीत सीखना था और अपने बच्चों को भी सिखाना था। मित्रों, जैसे कि मैंने पहले ही बताने की कोशिश की है कि संगीत किसी भी देश के लिए एक महत्वपूर्ण सत्य है। किसी ने इस प्रकार से कहा है कि मुझे परवाह नहीं कि देश का कानून किसने लिखा है, परंतु मुझे इस देश का संगीत लिखने दो। दूसरे शब्दों में, गीतों का कानून से ज्यादा प्रभाव होता है। अगर यह सत्य है तो हम एक दुखद समय में जी रहे हैं। आज का वर्तमान संगीत इस हद तक नीचे गिर चुका है कि बिल्कुल डर लगने लगता है। आइए देखें सुनने की बुलाहट। मूसा के गीत की चार प्रथम पंक्तियां परिचय हैं। हम व्यवस्था विवरण 32 उसके एक पद में पढ़ते हैं, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी गवाही देने के लिए बुलाया है कि ये वे स्थितियां हैं जिसमें वे इसराइल को रखेगा जब वह तैयार था कि वह इसराइलियों को देश से बाहर निकालकर न्याय करे। यशायाह ने भी इस तरह की बुलाहट को दर्ज किया। कुछ इस तरह यशायाह के पुस्तक का आरंभ होता है, जहां पर लिखा है, आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, अहाज और हिजकिया नाम यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। इसे हम यशायाह एक अध्याय उसके एक से दो पद में पाते हैं। मित्रों, जब परमेश्वर ने इसराइल को देश में रखा तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह बनाया। जब 700 वर्ष के बाद वह अपने देश से बाहर निकालने पर था तो उसने फिर स्वर्ग और पृथ्वी को गवाह ठहराया। परमेश्वर ने यह सब कुछ किसी कोने में नहीं किया, उन्हें देश से बाहर निकालकर वह न्याय कर रहा था। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 32 अध्याय उसके दो पद में हम पढ़ते हैं, मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधे पर झाड़ियां। यह परमेश्वर का वचन का तरीका है। भजनकार कहता है भजन संहिता 72 उसके 6 पद में, वह सूखी घास पर ओस की बूंदों की बारिश की तरह आ जाएगा और इस तरह जैसे भूमि पर आसमान से बारिश होती है। जी हाँ, मैं इस बात को पसंद करता हूँ। डालस टेक्सास में एक सेविका थी जिसने अपने प्रेमी को खो दिया था। उसने अपने पादरी को बताया कि अब मैं इस पंक्ति के अर्थ को समझती हूँ। वह एक सूखी और प्यासी थी और प्रभु का वचन बारिश के समान उसके पास आया था। इसी तरह प्रभु का वचन हमारे पास भी आना चाहिए। मित्रों, दक्षिणी कैलिफोर्निया में पूरी गर्मी रहती है और बारिश नहीं होती है, और उसके बाद में जब बारिश होती है तो भूमि पूरी तरह से सूखने के लिए तैयार होती है। यह पेड़ों के पत्तों को साफ कर देती है और सब कुछ साफ हो जाता है और साफ साफ दिखाई देने लगता है। परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में आए और हमारे दिलों में बस जाए। हम व्यवस्था विवरण 32 उसके 3 पद में पढ़ते हैं, मैं तो यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह गीत चट्टान के विषय में है। आप इस शब्द चट्टान को देखें, जिसका प्रयोग लगभग 7 बार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह को भी चट्टान कहा गया है। मसीह कोने के सिरे का पत्थर, जिसे हम 1 पत्रस 2:6 में पढ़ते हैं, उसका कार्य सिद्ध है। यह कितना अद्भुत गीत है जो परमेश्वर की महिमा को बताता है और आज हमारे द्वारा महिमा पा रहा है। मित्रों, परमेश्वर की दया अनुग्रह के बदले सारा देश बुरा करता है। हम व्यवस्था विवरण 32:5 में पढ़ते हैं, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। परमेश्वर इसराइल का पिता था। सृष्टि के कारण उन्होंने छुटकारे की बातें नहीं की थी। एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर सारी मानव जाति का पिता है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो वह परमेश्वर का बेटा कहलाया था, लेकिन आदम ने पाप किया और उसके बाद आदम का वंश परमेश्वर का बेटा नहीं कहलाया, जब तक कि वे प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान नहीं बन गए। संपूर्ण मानव जाति की एक कृत्रिम तस्वीर है मूर्ख लोग। यहोवा की भलाई, हम भजन संहिता 72:6 पढ़ते हैं, अब हमारे पास परमेश्वर की भलाई को एक उत्तम पद्यांश के रूप में देखें। वचन 8 एक असामान्य बात है जिसे मैंने कभी भी संतुष्टिजनक उत्तर नहीं प्राप्त किया। पृथ्वी के राष्ट्र इसराइलियों की गिनती के अनुसार आंके गए हैं। दूसरे शब्दों में, जितने राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े हैं वे सब इसराइलियों की गिनती के अनुसार रखे गए हैं। यह एक महान बात है और जिसका अध्ययन आज हमें करना चाहिए। लगभग 40 वर्षों तक जंगल के बीच परमेश्वर ने उस खतरनाक जंगल के बीच में अपने लोगों की अगुवाई की और संभाल कर रखा। क्यों? क्योंकि वे उसके आंखों के तारे थे और यह कितना ही सुंदर चित्रण था कि वह अपने बच्चों से प्रेम करता है। आइए अब हम आगे देखते हैं और देखें राष्ट्र का परमेश्वर के खिलाफ हो जाना। व्यवस्था विवरण 32:15 में लिखा हुआ है, परंतु यशुरोन मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हृष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। मेरे मित्रों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यशुरोन इसराइल का एक और नाम है। यशुरोन मोटा हो गया था और घुड़की मारने लगा था। यही तस्वीर जो आज हम मसीहियों में पाते हैं। और इनमें कितने शिकायत करने वाले लोग हैं, इनमें मसीही लोग भी शामिल हैं। वे मोटे हो गए थे अर्थात समृद्ध हो गए थे। वे अब अपने चट्टान पर ध्यान लगाना आवश्यक नहीं समझते थे। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 32:16-18 में लिखा है, उन्होंने पराय देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए जो अनजाने देवता थे, वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनका पुरखा कभी नहीं डरे। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको तू भूल गया है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि इसराइलियों का परमेश्वर उनका न्याय करता है। आगे व्यवस्था विवरण 32:19-20 में लिखा है, इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रिस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। परमेश्वर ने कहा कि वह अपने इन लोगों को छिपा लेगा, वह स्वयं को उन पर प्रकट नहीं करेगा। तब हम देखते हैं परमेश्वर की अपने लोगों के लिए प्यास। व्यवस्था विवरण 32:26-27 में लिखा है, मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तितर बितर करूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा ना हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह कहने लगे कि हम अपने ही बहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। मित्रों, परमेश्वर ने कहा वह अपने लोगों को बिखरा देगा। क्या यह उनके शत्रुओं के लिए भय का कारण न था? वह कहता है, मैं अपने लोगों का नुकसान नहीं करने दूंगा, उन्हें नष्ट नहीं होने दूंगा। जब उनके शत्रु उनसे अजीब व्यवहार करेंगे और जब तक वे यह न कहें कि हमने अपने बल से यह किया है, प्रभु ने यह नहीं किया। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या ही तस्वीर है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्यासा है। वह उनका छुटकारा करना चाहता है, वह उनको बचाना चाहता है। इसराइल के अन्य राष्ट्र भी आशीष पाएंगे। अंत के भाग में गीत में बताया गया है कि इसराइल के साथ अन्य राष्ट्र भी आशीष पाएंगे, जिसे हम व्यवस्था विवरण 32 उसके 43 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे अन्य जातियों, उनकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। मित्रों, इस महिमापूर्ण पंक्तियों के साथ मूसा अपने गीत का समापन करता है। होशिया अर्थात यहोशू व्यवस्था विवरण 32 उसके 45 पद में हमें बताता है, लिखा हुआ है, जब मूसा ये सब वचन सब इसराइलों से कह चुका, तब हम आगे देखते हैं जो अंतिम प्रोत्साहन है, व्यवस्था विवरण 32 उसका 46 और 47 पद। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिता कर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने की चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम ये पाते हैं कि आज्ञाकारिता के आधार पर ही वे देश में बसे रहेंगे। तब हम आगे पढ़ते हैं 32 उसके 48 से 52 पद में, लिखा है, फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इसराइलियों की निज भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीनै पर्वत में, सीनै जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इसराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इसराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने ना पाएगा। मित्रों, मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधि व व्यवस्था देने वाला था, फिर भी वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और इसी के साथ इस अध्याय का समापन होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 33 से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा गोत्रों को आशीष। अंतिम सामूहिक कार्य जो मूसा ने अपने मृत्यु से पहले किया है वह ये था कि उसने अपने लोगों के गोत्र को एकत्रित किया और हर एक को आशीष दी। हम व्यवस्था विवरण 33 उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इसराइलों को दिया वह यह है, उसने रूबेन से शुरुआत की। और तब हम व्यवस्था विवरण 33 के 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, रूबेन न मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हों। फिर मूसा ने प्रार्थना की कि इसराइल में रूबेन कभी न मरे। उसके पश्चात हम 33 के 7 पद में देखते हैं, और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ कि मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा, वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। यहूदा एक शाही गोत्र है जिसमें से मसीहा पैदा होगा। तब हम देखते हैं 33 उसके 8, 10 और 11 पद में लिखा है, फिर लेवी के विषय में उसने कहा कि तेरे तुमीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नाम सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। वे याकूब को तेरे नियम और इसराइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर, उसके विरोधियों और वैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सकें। हारून के परिवार में याचकों के द्वारा इस गोत्र का आदर किया जाता था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 33 उसके 24 पद में। फिर अशेर के विषय में उसने कहा, अशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डुबोए। और तब हम आगे देखते हैं 33 अध्याय उसके 26 से 29 पद में लिखा है, हे यशुरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। और इसराइल नीडर बसा रहता है अन और नए दाख मधु के देश में। याकूब का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसराइल ने परमेश्वर का कहा माना होता तो शायद वे और भी आशीषित हो पाते। यहाँ पर अध्याय 33 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 34 में देखेंगे। मूसा की एकांत में और अनजानी मृत्यु। एक प्रश्न उठता है कि मूसा ने अपने मृत्यु के बारे में स्वयं कैसे लिखा? हो सकता है प्रभु ने उसे बता दिया था कि वह मरने वाला है। मैं लोगों की दाह संस्कार में गया हूं और कई लोगों ने अपनी पूरी सेवकाई की व्याख्या लिखित में मरने से पहले की थी, और जो भी हो, कई महान लोग विश्वास करते हैं कि यह अंतिम भाग यहोशू की पुस्तक का है। आइए हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 34 उसके 1-6 पद में लिखा है, फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एप्रेम और मनस्से का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सुअर तक के यरीहो नाम खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने इब्राहिम इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, यह वही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मित्रों, मूसा तो मर गया, लेकिन उसके मृतकों में से जिलाया जाना अवश्य था, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उसका रूपांतरण हुआ तो वह मूसा और एलिया से बातें कर रहा था। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34 अध्याय उसके 7-8 पद में, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था, और इसराइली मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे, तब मूसा के लिए रोने और बिलाप करने के दिन पूरे हुए। मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि उसकी कब्र को क्यों छुपाया गया। बात यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि मूसा रूपांतरण के पहाड़ पर दिखाई दे। परमेश्वर ने मूसा के दाह संस्कार की सेवकाई की, यद्यपि हमें लग सकता है कि स्वयं मूसा की एकाग्र मृत्यु है। कहीं पर इसका अनुवाद ऐसा भी हुआ है कि परमेश्वर ने उसे चूमकर सुला दिया। यह एक बहुत अच्छा विचार है कि प्रभु ने उसे चुना और मूसा को सुला दिया। यहाँ किस प्रकार की तस्वीर सामने आती है। मित्रों, यह दुखद शब्दों के साथ समापन इस पुस्तक का होता है जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, लेकिन हम यहोशू की पुस्तक में इसराइलियों के साथ प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे और उन आशीषों को देखेंगे। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है। इस सारे पुस्तक के अध्ययन के द्वारा आपने आशीष पाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे और अधिक जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 कार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा, सामने आओ पास उसके तुम करो।